संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 300 है। ज्ञान विशेष अधिकार की, दिव्य विशेष अधिकार का अंतिम गाथा हो गई थी और उसका ये भावार्थ है, उपसंहार है, उसकी चर्चा चलना है। ये बात बताई थी कल कि एक शास्त्र तात्पर्य होता है और एक गाथा का तात्पर्य होता है। तो यहां जो उपसंहार में हम बता रहे हैं तो सूत्र तात्पर्य नहीं है, बल्कि वो शास्त्र तात्पर्य है, मान संपूर्ण द्रव्य विशेषाधिकार है का सारांश बताया गया है। अब जो बात बताई गई है यहां पर बोल्ड टाइप में है, वो कुछ विचित्र लगती है। देखो, अनंत काल में जो जीव आत्मोपादान से सिद्ध सुख को प्राप्त हुए हैं और भविष्य काल में जो भी जीव सिद्ध सुख को प्राप्त होंगे, वे सभी काल लब्धि के वश से ही हुए हैं, तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है। ये आता है कई काल लब्धि बसते हैं दयाल, और काल लब्धि के आए बिना कोई उपाय करो तो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी, कलष्टी का वगैरह में। अब यहां वो कहते हैं कि काल लब्धि से नहीं है, उसे अकाल लब्धि ही मत मान लेना लिखा है। यद्यपि काल लब्धि से ही हुए हैं, उसे स्वीकार करके भी फिर निज परमात्मा ही उपाधेय है। अब क्या ये क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा तो उपाधेय है ही, मतलब काल लब्धि नहीं है उपाधेय। काल लब्धि से स्वीकार करके भी कहते हैं वो उपाधेय नहीं है। काल लब्धि का ध्यान थोड़ी करोगे, मतलब ध्यान तो अपने आत्मा का परमात्मा का ही करोगे ना। तथापि परमात्मा ही उपाधि है, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी जो निश्चय सम्यक, उसकी ही मुख्यता है, काल की नहीं, जिस कारण है ये है। अब काल लब्धि को ये बता रहे ये तो पांच संवाय हैं और पांचों संवायों से कार्य की सिद्धि होती है, और उसमें किसी एक के आराधना की बात है ही नहीं। तो एक है, एक उपाधेय नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं भाई इसमें? माने हम आत्मा से हटके और काल लब्धि पे ही नहीं चले जाएं और बस काल का इंतजार करके बैठे। काल में भी दो बातें हैं, एक तो ये कि वो जो काल द्रव्य का जो की पर्याय जो है ना, समय और काल द्रव्य जो एक एक प्रदेश आकाश के प्रदेश पर स्थित है, वो जो एक प्रदेश ही है वो काल द्रव्य, और काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश समय, वो समय वो पर्याय है, वृत्ति है, वो काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य तो हमको नहीं करना है, जो काल द्रव्य की जो पर्याय है और काल द्रव्य का जो द्रव्य है वो पर द्रव्य है, और वो हमारे लिए निमित्त भी नहीं है। जब निमित्त की बात आती है तो देवसाज गुरु और आते हैं, खैर में आई ना, तो वो उस पर से ध्यान हटाना चाहते हैं। एक अपनी जो आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार होते हैं ना, तो उसमें जो काल होता है वो काल तो उसमें शामिल है। वो काल की लब्धि का मतलब है कि उस लब्ध काल माने पर्याय, यहां समय कहा था ना और यहां पर्याय, तो पर्याय की उपलब्धि का समय है। जब अपने कहते हैं प्रत्येक काल की पर्याय के समय होगी, वो अनंत काल पहले से नक्की है, तो वे कहते हैं कि जब वो आएगा नक्की का काल तभी कार्य होगा। तो इसमें ये बात किसी के विरुद्ध में नहीं है, मतलब विरुद्ध में नहीं है माने क्या, कि जब खड़ा आ गया तब होगा और जो होगा उसे होना कहते हैं, और प्रति समय हमें पर्टिकुलर काम की अपेक्षा लगा लेते हैं तो ऐसा दिखता है कि काल अवधि बहुत कठिन है। सम्मादर्शन की हमने लगा ली, अब अनंत काल में एक समय आएगा जब हमें सम्मादर्शन हो गया हो गया होगा, आ गया ना, पहली दफे की बात है ना, तो हमें बहुत दुर्लभ दिखता है। लेकिन प्रति समय पर्याय में कोई ना कोई काम तो हो ही रहा है ना, और उसकी काल अवधि उस समय है ही, तो ऐसा कौन सा समय है जब काल अवधि नहीं है। जो पर्याय अभी हमें इस समय हो रही है उसकी काल अवधि है, तो अभी ऐसा लगता है कि ये तो पूरे बाजार में जहां जाओ सब जगह 24 घंटा है, हर एक की है। अभी हमारे ज्ञान में जो आ रहा है समझ लो उसी की काल अवधि है, अथवा जो हो रहा है हम में हमसे उसी की काल अवधि है ना। तो फिर ये कहते हैं वो काल अवधि हे है, काल अवधि को नहीं समझ लेना, यद्यपि होगा तो उसमें ही, ये भी कहते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा प्रमुख है। फिर वो आत्मा की भी बात से आगे बढ़ते हैं, कहते हैं उसमें ऐसे आत्मा में जो रुचि, लिखा देखो ऐसे रुचि रूप वीतराग चारित्र, अरे वीतराग चारित्र ले आए वहां से आत्मा से, और चारित्र का भी अपना भावी जो निश्चय सम्यक है, और उसकी ही मुख्यता है, मतलब वो चारित्र की मुख्यता भी नहीं है, वो भगवान आत्मा की मुख्यता भी नहीं है, है? वो निश्चय सम्यक की ही मुख्यता है। फिर और नेगेटिव काल की नहीं, जिस कारण वह हे है, अब कहा भी है, जो गाथा है उसको पढ़ो।
अष्टपहर गाथा क्रमांक 88। किम पलवीण बहुणा जैसे धानर वरा गए काले, सिज्ज हहि जे विभविया तम जान सम्मवाहप्पम, मुक्ति गए आ जाएंगे महात्म्य है सम्यक्त का, यह जान लो हे भवे जन इससे अधिक अब कहीं क्या।
हम इसमें कहते हैं कि जो आज तक जीव मुक्ति गए हैं अथवा जाएंगे वो सब निश्चय सम्मादर्शन के महात्म से जाएंगे, इसलिए उसकी महिमा है। ये तो निश्चय सम्मत की महिमा बताने वाली गाथा है। दूसरी गाथा ऐसी भी हो सकती है, होगी, कि जो काललब्धि की महिमा बताए, पांच कारणों में से जब जिस कारण की मुख्यता से बात करते हैं तब वो कारण हो जाता है। बस यहां तो आचार्य को ऐसा लगा मेरे ख्याल से जयसेनाचार्य को, जयसेनाचार्य की बात चल रही है कि भई फिर आगे ये काल ही काल पे न चले जाए और पुरुषार्थ से अलग हट जाए, तो खैर पुरुषार्थ पे लाए थे तो वीतराग चारित्र भी था, उसके बिना भी तो मोक्ष नहीं होता ना। जैसे निश्चय सम्यक के बिना नहीं होता तो निश्चय चारित्र के बिना भी नहीं होता, वो भी दोनों अनिवार्य ही है ना। तो उसमें कि वो चारित्र भी नहीं, उसका जो अविनाभावी निश्चय, उसके साथ जब अविनाभावी है तो दो ही हो गए ना, समझ नहीं, अविनाभावी माने जो के बिना नहीं हो, तो वो भी है और ये भी है, तो उसकी महिमा जानो। पर ये तो इनने ये गाथा यहां आपके सामने प्रस्तुत कर दी कि हमें निश्चय सम्मत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, माने वो पुरुषार्थ में से हमारी दृष्टि हट ना जाए, और फिर वास्तव में हमें करना क्या है ये प्रैक्टिकल सोचना चाहिए ना, कि तुम ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें और क्या करें। यानी वो काल अवधि लाने के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पर्याय की योग्यता जब आएगी तब आएगी, तो हमको तो वो शांत भाव से निरामय होना, निरामय मतलब निश्चिंत होना है, और बिल्कुल किसी तरह का विकल्प नहीं रखना है, ये असली पुरुषार्थ है जो बिल्कुल ही ऐसा नेगेटिव दिखता है। वैसे है इसलिए पॉजिटिव कि अनंत काल से हम निरंतर विकल्पों में ही उलझे हैं। अब ये कह तुम विकल्प मत करो, विकल्प नहीं करो, कहते विकल्प आए बिना रहते नहीं। सर्वे कहते भाई पर्याय के योग्यता के अनुसार तो विकल्प आएंगे, इसलिए उसका भी फिक्र नहीं करो। अंत में तो साम्य भाव की तरफ ही ले जाते हैं ना, है? माने हमको बिल्कुल भी एक तरह से यहां ऐसा हमको बताया नहीं है कि इसमें आप सक्रिय हो, पर बल्कि सब सहज भाव से इस जगत में हो रहा है और उसको उस सहजता को हम स्वीकार कर लें। और ऐसा क्यों हुआ ये विकल्प को टूटने, क्षेमचंद भाई प्रवचन करते थे तो वो एक इस बात पर बहुत वजन देते थे कि ऐसा क्यों हुआ ये प्रश्न ज्ञान स्वभाव में खड़ा ही नहीं होता। वो कहते जो तुमने प्रश्न पूछते भाई मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर ऐसा हो गया, मैंने बहुत किया लेकिन यही हो गया, ये सब बात हो गई, ऐसा क्यों हुआ ये ज्ञान स्वभाव में प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। जब पहले से नक्की है, सब सुनिश्चित है, तो फिर क्यों का सवाल कहां खड़ा होता है। हमने ऐसा उल्टा कहें कि ऐसा क्यों नहीं होता, हुआ है वो तो जो सुनिश्चित था उसी के अनुसार हुआ है ना, तो ये प्रश्न हो सकता है, ये तो हो ही नहीं था ऐसा क्यों हुआ, वो तो होना ही था इसलिए हुआ। लेकिन वो माने निश्चय सम्यक्त की महिमा चित्त में कम नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने वो बात कही। लेकिन निश्चय चारित्र में भी, निश्चय सम्यक्त में भी वस्तु का स्वरूप समझकर और उसमें हमें अत्यंत सहज भाव से उसकी स्वीकृति होना, यही असलियत में वास्तव में पुरुषार्थ है। गुरुदेव से ऐसा कहते थे जिस समय तेरे को ऐसा भाव जगेगा, ये तत्व स्वीकृत होगा तेरी दृष्टि में कि सब कुछ सुनिश्चित है और उसमें एक समय पहले भी कुछ नहीं हो सकता है, असली मेरे करने को कुछ नहीं है, तो अगले समय में तेरा भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बन जाएगा, ये निश्चित है। माने ये बात तभी आएगी तेरी समझ में पूरी जब तेरे अगले समय में भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बनना होगा। तो इससे क्यों, ये तो एक समय पहले की बात है ना, वो अगले समय की पर्याय की करता वो ही है ना, वही योग्यता उसकी करता है, वही होना है, वही होनहार है, सब एक समय में ही उत्पाद में ध्रुव तीनों घटाओ ना, माने एक समय पीछे ले जाकर वो अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों के सिलसिला वाला जो अपना क्षण उपादान है वहां उस पर चले जाएंगे और उसी समय पर रहेंगे, तत्समय की योग्यता उसी पर आ जाएंगे। तत्समय की जो योग्यता है वास्तव में वो काल नहीं है, स्वरूप समलब्धि को भी साल काल लब्धि कहते हैं, नियम साल में है ऐसा, किसी के ध्यान में हो तो वो गाथा है ना, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विद हवे लब्धि, वहां जो लब्धियों की चर्चा है उसमें है। अब उस गाथा में तो आचार्य सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तुम किसी से वचन का विवाद मत करो, क्योंकि जीव अनेक प्रकार के हैं, माने सबका स्वभाव अलग अलग है। नाना जीवा माने जीव अनेक हैं और उनके स्वभाव अलग हैं, और नाना विद हवे लब्धि और उनके ज्ञान का क्षयोपशम वो भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए जो बात तेरी समझ में आई है वो बात सबकी समझ में आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आ भी जाए और नहीं भी आए। इसलिए व्यर्थ में हम दूसरों से बहस करके उलझे, वो तत्वाभ्यास के लिए तत्व चर्चा करना वास्तव में वो अपना समय काटने की बातें हैं, क्योंकि हम स्वयं सोचते सोचते मन नहीं लग रहा है तो प्रवचन में बैठ गए, स्वाध्याय करने लग गए, साधर्मी हुआ तो उसे तत्व चर्चा करने लग गए, उसे भी बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है ऐसा मैं समझना। तो वो तो कहते हैं किसी से वचन विवाद में नहीं पड़ना। अब वहां ही टीकाकारों में नाना जीवा, तो वो नाना जीव गिनाने लग गए। जीव दो प्रकार के होते हैं, तेसरा स्थावर संसारी, पूरे जीवों के भेद गोमर सार। अपने छाबरा जी थे ना, हमें प्रवचन करते थे ना, इसी गाथा में बहुत करते थे, और उस वक्त कोई गिनाने लगते थे भाई लंबा लंबा, वगैरह मैं 10 दिन 15 दिन इस गाथा पर प्रवचन करूं। तो नाना जीवा में सारे जीव गिनाने लगोगे तो पूरा जीव कांड बता दो, मारना है बता दो, गुण स्थान बता दो, सब बता दो। वो वास्तव में वहां पर उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। शांत जी ऐसा ही केस है जैसे मैंने उपकार की बारी बात आपको कही थी ना, यहां पर तो उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। और हम वहां पर वो करता है कि नहीं करता है, भलाई भी करता है, उसे पुण्य बनता है कि पाप बनता है, वो कोई चर्चा ही नहीं थी। वही चर्चा को हम लंबा थे, कोई भी विषय लंबा कर सकते हैं। ऐसी कहीं कहां भी बस वही इतनी सम्यक की महिमा है, माने हमने तुमको ये सब बात काल द्रव्य की चर्चा करी तो तुम ये मत समझना कि काल द्रव्य के पराधीन तुम कुछ हो, तुम्हारा कोई उस काल द्रव्य से कोई अधीनता नहीं है, ना उसकी द्रव्य से और ना उसकी एक समय की पर्याय से और ना पर्यायों के प्रवाह से। मतलब जो तुम्हारी काल लब्धि तुम्हारे में अलग है, द्रव्य क्षेत्र काल वाला वाला जो काल है, तुम्हें मैं काल से खंडित नहीं हूं, वो उस काल की बात है, और उस वो है वो पर्याय रूप, और वो है प्रवाह, प्रवाह रूप, विस्तार रूप नहीं है, प्रवाह रूप है। उसकी जो छोटी से छोटी पर्याय है वो समय है, वो पूर्व समय उत्तर समय ऐसा है, क्षेत्र में ये आगे पीछे ऐसा होता है, और उसमें ऐसा आगे पीछे है, कल आज ऐसा आगे पीछे है। तो ये तो मतलब कोई विशिष्ट बात नहीं है, ये सब बात मैंने इसके संदर्भ में कह दी जो कहनी है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि इनने क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह के, तो कौन हम कहां भटक गए हैं, कोई ऐसी बात तो कुछ हुई नहीं है, है ना, कि भाई इसका भाई निश्चय सम्यक की मुख्यता हमें रखना चाहिए, ये बात है ठीक है। अब जो यहां से लिखा है उक्त संपूर्ण कथन का सार आए, वो इस संपूर्ण का नहीं है, पूरे अधिकार का है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी द्रव्य है। तो रोजी नहीं मैं मसूद तात्पर्य में भी बताता रहा है ना, जिसे अप्रदेशी भी कहा जाता है, अनेक प्रदेशी पने के निषेध के लिए उसे अप्रदेशी कहा गया था, किंतु कुछ लोगों ने उसे सचमुच ही अप्रदेशी मान लिया। यही कारण है कि यहां पर इस बात पर वजन दिया जा रहा है कि वह एक प्रदेशी है, प्रदेशों से पूर्णता रहित नहीं है, इसलिए वह प्रदेशमान द्रव्य है, अप्रदेशी नहीं। वह ना तो धर्म द्रव्य के समान असंख्य प्रदेशी ही है और ना एक प्रदेश इसी से रहित है। इतना जो चार लाइनें हैं ना, मैंने कहा था एक दिन अभी पूरा स्थिरीकरण का साल जिसमें अपने 8-10 दिन लगा दिए, उसका सिर्फ 4 लाइन में लिखा जा सकता है, और ये मैंने लिखा है, फिर इसमें आ गया पूरा जो अपने 10 दिन में बोला वो इसमें आ गया। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लो आपने पूरा अध्याय समझ लिया अच्छी तरीके से। इसमें भी रिपीटिशन है, जो मैंने लिखा है इसकी भी और दो लाइनें कम की जा सकती हैं। माने एक छंद में पूरी बात को अच्छी तरह से बांधा जा सकता है ना? अब यहां प्रश्न संभव है कि विगत गाथाओं में तो काल द्रव्य को अप्रदेशी और नास्तिक का पूरी शक्ति लगाकर सिद्ध करते आए हैं, अब ये क्या है? वही बात उठा रहे द्वारा कि तुम खूब जोर देते कि तुमने उसे अप्रदेशी 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 कहा था और अब उसी उतना ही जोर लगा लगा करके कि वो अप्रदेशी नहीं है अप्रदेशी नहीं है ऐसा कह रहे, मैंने उसी बात को ही उठाया है ना, इसमें नया क्या है? अब उतना ही जोर से है बात कही जा रही है कि वह अप्रदेशी नहीं सब प्रदेशी ही है, इसका कारण क्या है? अरे भाई बात यह है कि काल द्रव्य मूलता तो एक प्रदेशी ही है, ना वह बहिर् प्रदेशी है और ना प्रदेश रहित अप्रदेशी ही है। कुछ ये जो है ना बोल्ड इटालिक में छपी है, बस इतना ही पर्याप्त है। काल द्रव्य का जो प्रकरण चला ना ये प्रदेशी है, ये एक सूत्र का तात्पर्य है, ये 144वीं का था, सिर्फ इतनी सी बात को कह रही है मैं। यदि काल द्रव्य अप्रदेशी नहीं है तो फिर उसे अप्रदेशी क्यों कहा जाता? फिर अब लगे रहो जब तक लगे रहना है, मुझे बहुत रिपीटेशन सा लगता है। आचार्य को नहीं लगा तो उन्होंने किया है खूब अच्छी तरीके से, और गुरुदेव श्री पे प्रवचन करते हैं तो मैं सुनता हूं तो वो तो एक बात को ही एक घंटे तक कहते ही रहते हैं बिल्कुल हू बहू। कोई मैं उनकी गलती निकालने की बात नहीं कह रहा हूं, स्टाइल बता रहा हूं आपको कि वो कहते ही रहते हैं, उसी को कहते रहते हैं, उसी को कहते रहते हैं, है ना। यदि काल द्रव्य अप्रदेशी नहीं है तो उसे अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? बहु प्रदेशत्व के निषेध के लिए उसे अप्रदेशी कहा जाता है। क्या अर्थ करूं बोलो इसका, क्या नई बात बताऊं? किंतु वह प्रदेशों से पूर्णता रहित नहीं है, एक प्रदेश तो उसके भी होता ही है, इसमें अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त कथनों में परस्पर विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा भेद है बस। हो गया, अब कुछ नहीं है, मेरा गला भी बहुत सूख गया है, बोल नहीं पाता हूं, इसमें भी कुछ नहीं है कहने का, चाहे तो अगला अध्याय शुरू कर सकते हैं अपन।